ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर टॉपिक कि ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है श्रीमत् प्रमाण दिनचर्या। तो चाहे श्रीमत् ऐसी चीज है कि यदि हम ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहें, यदि ब्राह्मण जीवन को संपूर्ण निर्विघ्न बनाना चाहें, यदि हम ब्राह्मण जीवन में परमात्म शक्तियों और वरदानों से भरपूर करना चाहें, यदि हम ब्राह्मण जीवन में परमात्म मिलन की सुंदर अनुभूति करना चाहें, तो उसके लिए है श्रीमत् प्रमाण दिनचर्या। क्योंकि श्रीमत ऐसी चीज है जिसको बाबा कहते संजीवनी बूटी, जो मूर्छित को भी सुरजीत कर देता है। संजीवनी वो श्रीमत वो शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा हम नर्क को स्वर्ग बना देते हैं। श्रीमत वो औषधि है जिससे हम 5 विकारों की बीमारी से छूट जाते हैं। श्रीमत वो साधन है जिस साधन से हम तीनों लोकों तीनों कालों की यात्रा करते हैं। श्रीमत वो साधना है जिस साधना से हम परमात्म मिलन की सुंदर अनुभूति करते हैं। तो बहुत जरूरी है श्रीमत प्रमाण अपनी दिनचर्या बनाना। जैसे अभी डॉक्टर जी क्लास करा रहे थे, उन्होंने एक बात बताई कि बड़ी दादी ने उन्हें कहा कि यदि जो आप करते हो वही सुनाते हो तो ठीक है, अगर नहीं सुनाते हो तो ये आपके ऊपर पाप चढ़ता है। तो मैं भी आपको बताऊं कि जो आज का टॉपिक है ये मेरे पूरे लाइफ से लगता हुआ है। क्योंकि जब मैं ज्ञान सरोवर आया तो मैंने यही संकल्प किया कि मुझे अपनी दिनचर्या पूरी तरह से श्रीमत् प्रमाण रखनी है। श्रीमत् में जरा भी मनमत मिक्स नहीं। तो श्रीमत् में पहली श्रीमत् क्या आती है दिनचर्या में? अमृत वेले उठना। तो आज से मैंने जो 30 साल पहले संकल्प किया था कि मुझे एक दिन भी अमृत वेला योग मिस नहीं करना है, तो ये बाबा की ही हम कृपा दृष्टि कहेंगे, बाबा का ही एहसान कहेंगे कि इन 30 वर्षों में एक दिन भी मिस नहीं हुआ। और आप यहां पर आए हैं योग भट्टी में, तो योग भट्टी में स्वयं भगवान शिव बाबा की भी उपस्थिति होती है। अगर आपका कभी कभी मिस होता हो किसी भी कारणवश, अगर यहां पर आप संकल्प करके जाएंगे बाबा मुझे आप ऐसी शक्ति भरो ऐसी ताकत भरो, तो आप जो भी संकल्प करेंगे वो बाबा अवश्य पूरा करेंगे। क्योंकि इस संगठन का इस वातावरण का पावरफुल योग भट्टी आपने किया है, तो आपके संकल्प बहुत पावरफुल हो गए हैं और बाबा की भी विशेष मदद मिलेगी। तो अवश्य संकल्प करके जाना। और मैं एक अव्यक्त मुरली बता दूं, आप खुद पढ़ लेना, अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक बाबा ने हर कर्म की श्रीमत बताई है, वो है 31 दिसंबर 1970। आप इसको एक बार नहीं दो चार बार पढ़ लेना, फिर देखना क्या ब्राह्मण जीवन में जो बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख, क्या सुख का अनुभव होता है, क्या आत्म संतुष्टता का अनुभव होता है, क्या खुशी का अनुभव होता है, आपका योग बहुत सहज हो जाएगा। तो पहली बात ये दृढ़ संकल्प करना कि मुझे एक दिन भी अमृत वेला योग, क्योंकि ये दिनचर्या की पहली आज्ञा, यदि हम पहली ही आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो और क्या पुरुषार्थ करेंगे। तो करना क्या है, अमृत वेले जैसे ही आंख खुले, आंख खुलते ही हम सब क्या करते हैं? बहुत सुंदर, गुड मॉर्निंग। क्यों कहा बाबा ने गुड मॉर्निंग करने के लिए? मुझे याद आ रहा है, बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा, तुम बच्चे गुड मॉर्निंग करो या ना करो, लेकिन मैं करता हूं। है ना? देखो, आपके बच्चे, माताओं को अनुभव होगा, आपके बच्चे आपके पास सुबह सुबह आए और नमस्ते करे, प्रणाम करे, तो आप क्या करेंगे उस समय? आशीर्वाद देंगे ना। तो रोज बाबा से गुड मॉर्निंग करके रोज ही बाबा का आशीर्वाद लेते रहो, रोज वरदान लेते रहो। हम गुड मॉर्निंग करेंगे तो वो भी कुछ देगा या नहीं, हा? करेगा या नहीं करेगा? तो आप क्या करना, कल से ही जैसे आंख खुले, बाप दादा हमारे सामने, बाबा को सामने लाओ और बड़े प्यार से, बाबा गुड मॉर्निंग, फिर अनुभव करो बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर रख दिया और बाबा ने वरदान दिया, जो वरदान लेना चाहो। 5 मिनट ये करना और उसके बाद 5 मिनट के बाद बेड छोड़ देना, नहीं तो उस समय माया भी आती है। बाबा आते हैं वरदान देने तो माया भी बड़े रायल संकल्पों के साथ, क्या संकल्प? क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी हैं, तो वो भी संकल्प ज्ञानियों की तरह ज्ञान की बातें सुनाएगी। बाबा ने कहा था ना, बैलेंस बना करके चलना, है ना? ये मौसम ठीक नहीं है, कल सारा दिन सेवा में बिजी थे, है ना? ये संगम युगी शरीर है, इसकी भी तो संभाल करना है, कोई जरूरी है हॉल में जाकर के योग करना? और बाबा ने तो कहा है लेटे लेटे भी याद कर सकते हो। बस, है ना, माया के ऐसे ऐसे संकल्प। लेकिन कोई भी प्रकार का आलस सलबेलेपन का कोई बात नहीं, रोज तो करते हैं, आज नहीं करेंगे तो क्या है? शरीर को भी रेस्ट देना जरूरी है ना। ये जो भी संकल्प आते हैं अमृत वेले के समय, बिल्कुल नहीं, है ना। और फिर बेड छोड़ करके अलग स्थान पर बैठो और बैठने के समय आप लक्ष्य बनाओ। हम क्या है, बैठ जाते हैं केवल योग में। जब भी आप योग में बैठते हो, चाहे अमृत पहला शाम को जब बैठते हो, तो आप 1 सेकंड अपने आप से पूछो, समझो अमृत वेला आपको 1.25 घंटा बैठना है, क्या पूछना है? इस 1.25 घंटे के अंदर मुझे करना क्या है? बिना कोई संकल्प लिए, बिना कोई लक्ष्य लिए बैठना ही नहीं है। अगर आप संकल्प नहीं लेते, कोई लक्ष्य नहीं लेते, तो आपका समय ऐसे ही निकल जाएगा, नींद में, उबासी में, या एक शून्य अवस्था। एक ऐसी भी अवस्था होती है जिसमें हमें अपने आप को भी नहीं पता चलता कि हम योग कर रहे हैं। कोई बाजू वाला थोड़ा सा धक्का देता है कि अलर्ट होकर के बैठो, तो उसको भी आंख दिखा देते हैं, मैं कितना अशरीरी का अनुभव कर रहा था, तुमने विघ्न डाल दिया। उनको ये भी नहीं पता चलता कि हम नींद कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था क्यों? क्योंकि हमने संकल्प लेकर के नहीं बैठा। जैसे आपको 1.25 घंटा बैठना है, तो उसको सेट करो, भाई 15 मिनट हम आत्म अभिमानी स्थिति का सुंदर अभ्यास करेंगे, दूसरे 15 मिनट में फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करेंगे, तीसरे 15 मिनट में हम बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे। ऐसे प्लान बनाओ, क्या अभ्यास? बहुत सुंदर सुंदर बाबा ने अभ्यास बताए, ये किसके लिए बताए हैं? मेरे लिए ही बताए हैं ना। तो पहली बाबा की श्रीमद दिनचर्या में अमृत वेला, दूसरी श्रीमत क्या है आप सब जानते हैं, हाँ, मुरली सुनना। घर पर ही सुन लेते हैं, बाबा ने कहा है ना मुरली सुनने के लिए, तो घर पर ही सुन लेंगे, चलेगा? कहाँ सुनना है? क्लास में जाकर के सुनना, ये बाबा की आज्ञा है, बाबा की श्रीमत है। देखो, आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं तो खुशी होती है ना, और नहीं मानते हैं तो आप सोचो। तो जो बाबा की आज्ञा पर चलते हैं, बाबा की तुरंत उनको, ये बाबा की आज्ञा है कि संगठन में, है ना, सेंटर पर जाकर के मुरली सुनो, ये बाबा की आज्ञा है। और हम आज्ञा मानते हैं तो जैसे लौकिक में हम माता पिता की आज्ञा पर चलते हैं तो उनकी दुआएं मिलती है, तो हम भी बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा की भी दुआएं मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। तो संगठन में जाकर के सुनना। हम कहेंगे अच्छा आप मुरली सुनते हो, तो आप कहेंगे हाँ सुनता हूं। सुनने का मतलब क्या? कई बार आप सभी को मालूम है, माताएं बोलती हैं है ना, मेरा बच्चा मेरी सुनता ही नहीं है, कितना भी हम कहते हैं सुनता ही नहीं है। कब कहा माता ने? माता बोल रही है, बच्चा सुन भी, कान तो खुला ही है ना, लेकिन उस माता ने कब कहा? जब बच्चे ने किया नहीं। तो हमने मुरली सुनी और प्रैक्टिकल में किया नहीं, तो वास्तव में सुना? सुना नहीं सुना। हम चार्ट भर देते मुरली सुना, अगर नहीं किया तो लिख दो उस दिन चार्ट में, आज मुरली हमने नहीं सुनी, क्योंकि किया ही नहीं। तो मुरली सुनना है और प्रैक्टिकल में करना है। एक बात गांठ बांध लो, आज बाबा ने क्या कहा और उसको मैं कहां तक कर रहा हूं। लेकिन उसके पहले याद रहे, अगर याद ही नहीं रहेगा तो करेंगे क्या? तो मुरली आपको याद रहे, मुरली का पूरा रस मिले, उसके लिए मुरली से आप सात बातें निकालना। वो सात बातें बहुत सुंदर बात, आप क्योंकि हम मीठे बच्चे धारणासार वरदान स्लोगन लिखते हैं बना बनाया, हम खुद मेहनत नहीं करते हैं। तो मुरली के बीच से आप सात बातें निकालेंगे। पहली बात हेडिंग डाल दो, आज की मुरली से स्व उन्नति के लिए सात सूत्र। पहला सूत्र, आज की मुरली से ईश्वरीय महावाक्य, नशे की पॉइंट, खुशी की पॉइंट, ऐसा और लिख दो उसके नीचे, आज बाबा ने ये बात कही। ऐसी कोई रोज की मुरली में बातें होती है जो हमारी खुशी को बढ़ा देती है, जो हमारे उमंग उत्साह को बढ़ा देती है, लिख दो। दूसरा, आज की मुरली से स्वमान। मैं ये कहूंगा आपको केवल भरना नहीं है, हम लिखेंगे तो बहुत सौ स्वमान रोज की मुरली से निकलेगा, उसमें नहीं, एक लिखना है और इस संकल्प के साथ आज सारा दिन इस स्वमान में रहना है। तीसरी बात, आज की मुरली से योगा, योग के संदर्भ में बाबा ने क्या कहा, लिखो और सारे दिन में बार बार उस सुंदर अनुभूति का है ना, उसी में योग अभ्यास करो। रोज आपको नए नए तरीके, नए नए विधियां मिलेंगी योग की। तीसरी बात, योग के संदर्भ में। चौथी बात, आज की मुरली से धारणा, कितना लिखना है? एक बात, वही लिखना है जो दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो, आज बाबा ने कहा है ये मुझे करना ही है। चौथी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज की मुरली से चिंतन, एक पॉइंट ले लो उसके ऊपर चिंतन। चिंतन करने का सबसे अच्छा तरीका लिखना, अगर हम वो लिख लेते हैं तो वो ज्ञान का खजाना हमारा अपना बन जाता है, वो जीवन में कभी नहीं भूलता और योग बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि समर्थ संकल्पों का स्टॉक जमा होता है, ज्ञान सुनाने की इच्छा करेगी। तो बहुत जरूरी है रोज की मुरली से एक पॉइंट लेकर उसके ऊपर चिंतन करना। चौथी बात, आज की मुरली से धारणा, सेवा, सेवा के संदर्भ में बाबा ने क्या कहा, आज भी बाबा ने कहा सेवा के संदर्भ में, क्या किस प्रकार सेवा करनी है? बाबा का पूरा मददगार कौन? जो तन से, मन से, धन से, है ना। तो आप ये देखो, किसी भी प्रकार की सेवा की। एक बार अमीर चंद भाई जो पंजाब जोन के इंचार्ज थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई कि मनोहर दादी ने एक बार मेरे से प्रश्न पूछा कि अमीर चंद भाई तुम्हारे बाबा से कितने संबंध हैं? उन्होंने कहा बाबा से तो हमारे सारे ही संबंध हैं, लेकिन मुख्य तीन संबंध के बारे में बाबा कहते हैं। तो दादी ने कहा लेकिन तुम्हारे तो तीन संबंध नहीं है। तीन संबंध कौन से? हाँ आपको मालूम है, बाप, टीचर, सतगुरु। तो दादी ने उनको कहा तुम्हारे तीन संबंध नहीं है। कहा क्यों दादी, सबके तीन संबंध हमारे नहीं है, ऐसा क्यों? कहा नहीं, देखो एक बाप का संबंध, एक टीचर का संबंध। टीचर का रोज मुरली सुनने आते हो, ये तो हो गया है ना, टीचर और स्टूडेंट का संबंध। लेकिन बाप का संबंध कब माना जाएगा? जब बाप के कार्य में सहयोगी बनो। तुम तो रोज मुरली सुन करके चले जाते हो, सेवा करते हो कुछ कहा सेंटर पर आकर के अगर थोड़ा बहुत सेवा करो, तन से या मन से या किसी भी प्रकार से सेवा की, तब तो माना जाएगा ना बाप का संबंध। कहा हाँ दादी, आज से ये संबंध जोड़ा। अच्छा गुरु का संबंध बता दो। गुरु का संबंध, दादी ने कहा फिर रोज शाम को भी आओ योग करो, तब कहा जाएगा बाप, टीचर, सदगुरु। तो कहने का भाव ये है कि हम प्रैक्टिकल में कहां तक कर रहे हैं। जो सेवा बाबा ने बताई, कोई भी सेवा हमने की, कितनी बातें हुई हाँ? छह हो गया पांच, अच्छा छठा एक है ईश्वरी महावाक, नोट करो। दूसरा है सोमान, तीसरा है धारणा, चौथा है योग। हाँ तो कितना हो गया सेवा। अच्छा अभी नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात है आज की मुरली से स्व चेकिंग, ठीक है ना। रोज बाबा कहते हैं ना चार्ट लिखो, तो हम देखें। आजकल कोई अगर समझाएगा ना तो हमें थोड़ा सा अभिमान भी आ सकता है, मुझे सब पता है, हमें किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम खुद के खुद टीचर बनते हैं, खुद को समझाते हैं, तो हम अपने आप को सहज परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ना चार्ट लिखो, चार्ट लिखो। तो रोज रात में सोने के पहले हम अपनी चार्ट की चेकिंग करें। बाबा ने एक मुरली में कहा, ये भी श्रीमत है, रात में सोने के पहले बाबा को सारे दिन का समाचार सुना करके सोना, ये भी श्रीमत है। और बाबा ने एक मुरली क्या, दो तीन मुरलियों में बाबा ने कहा था कि जो बच्चे रोज रात में सोने के पहले बाबा को सारे दिन का समाचार सुनाकर सोते हैं, वो धर्मराजपुरी के सजाओं से बच जाएंगे। ये बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा है। तो एक बहन ने गुलजार दादी से इसके बारे में पूछा, दादी ये तो बड़ी सहज बात है, रोज बाबा को सुना दे, है ना। तो दादी ने उसका सुंदर अर्थ सुनाया कि रोज सुनाने का मतलब ये नहीं कि रोज ही गलतियां करते रहो और हम सुना दिया बाबा को, है ना। आप रियलाइज करते हुए कि बाबा ये मेरे से नहीं होनी चाहिए था, हो गई, आगे से नहीं होगी, माफ करना, इस संकल्प के साथ सुनाना है। तो इस प्रकार से सात बातें नोट करेंगे, आपको देखेंगे मुरली याद रहेगी, मुरली का पूरा सुख मिलेगा। तो जिन जो कोई नहीं नोट किया हो तो नोट कर लेंगे, पहला ईश्वरी महावाक, दूसरा सोमान, तीसरा योग अभ्यास, चौथा धारणा, पांचवा चिंतन, छठा सेवा और सातवां स्व चेकिंग। ये सात बातें नोट करेंगे रोज की मुरली से निकाल करके, तो मुरली का पूरा रस मिलेगा, पूरा मुरली का सुख मिलेगा। नेक्स्ट, बाबा की श्रीमत क्या है कि भोजन, है ना, भोजन पर आ जाते हैं क्योंकि दिनचर्या की बात चल रही है ना। तो भोजन, भोजन कैसे करना है, बाबा की याद में 88 की अव्यक्त वाणी, जिसमें बाबा ने कहा जो बच्चे योग युक्त होकर के भोजन करते हैं, उस भोजन के अंदर विटामिन ए बी सी डी सारे विटामिन आ जाते हैं, वो भोजन दुख भंजन भोजन बन जाता है, वो भोजन दवा का भी काम करता है तो दुआ का भी काम करता है। ये बाबा के महावाक्य हैं। अभी कोई डॉक्टर आवे यहाँ स्वास्थ्य संबंधित क्लास कराओ, भीड़ लग जाती है, ये है वो है। बाबा ने कितनी सुंदर विधि बता दी, योग युक्त होकर भोजन करने से आप कैसी भी बीमारी खत्म कर सकते हैं। विटामिन्स की कमी के कारण ही होता है ना, तो तो सारे विटामिन आपको मिल रहे हैं, और योग युक्त होकर भोजन करेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे खाएंगे। डॉक्टर भी बोलता है धीरे धीरे, और बाबा ने कहा जो योग युक्त होकर के भोजन बनाते और खिलाते हैं वो किसी के बुद्धि को भी परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मानो आपका बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा है, कुसंग में जा रहा है, आप योग युक्त होकर उस बच्चे को भोजन खिलाओ, आप उसके बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हैं, सही राह पर ला सकते हैं। इतनी ताकत है योग युक्त भोजन में। अच्छा, और क्योंकि हम आपको 8 बजे से आपका अनुभव की लेन देन है, तो और श्रीमत क्या है, हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम छोटे छोटे टिप्स आप बता देते हैं दिनचर्या की। आप बैठते हैं, सारे अभी भी बैठे हुए हैं, आपकी योग युक्त स्थिति रहे, है ना। जब भी बैठे, शरीर कहां भी बैठा हो, कुर्सी पर, सोफा पर, बेड पर, लेकिन स्मृति क्या रहे, आप स्मृति को चेंज करो, मैं आत्मा राजा अकाल तख्त पर विराजमान भ्रुकुटि रूपी सिंहासन पर, मैं आत्मा सिंहासन पर बैठी हुई हूँ, मैं आत्मा बाबा के दिल तख्त पर बैठी हुई हूँ, मैं बाबा की गोदी में बैठी हुई हूँ, है ना। इसको चेंज करना है। बैठे हम कहां भी, लेकिन हम कहां बैठेंगे, बाबा की गोदी में। चल रहे हैं सारा दिन, हा? बैठे तो नहीं रहते, चलते भी हैं, क्या अनुभव करना है। हाँ, आप लोग तो बड़े समझदार हैं। हम फरिश्ता बन करके चल रहे हैं, लाइट के शरीर में चल रहे हैं, प्योर वाइब्रेशंस फैलाते हुए चल रहे हैं, बाबा की छत्र छाया में चल रहे हैं। बरसात अभी होती ना, तो क्या लगाते हो बरसात में, छाता लगाते हैं ना, तो उस छाता के बजाय सिर्फ बाबा को ही समझ लो, वही हमारे ऊपर छत्र छाया बन करके, छाता बन करके आ गया है। अच्छा, देख रहे हैं, देखते भी तो है ना सारा दिन। जब किसी को देखें, इसी सीजन की मुरली में बाबा ने कहा कि क्या देखो, कई बच्चे कहते बाबा इतना लंबा चौड़ा शरीर है, वो तो शरीर ही देखने में आता है, आत्मा देखने में कहां आती है। हाँ, तो बाबा ने कहा अच्छा लंबा चौड़ा शरीर है, तो इस शरीर में मस्तक भी तो है, हाँ, भ्रकुटी भी तो है, भ्रकुटी में देखो तो आत्मा देखो। जब भी किसी को देखना है आत्मा देखना है, हाँ, आत्मा देख करके हम बात करेंगे तो हमारे बोल में इतना प्रभाव आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति उस समय आपके आगे नाक कर ही नहीं सकता। जो आप कहोगे वो हां ही करेगा, क्योंकि आपके एक एक बोल बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, बहुत प्रभावशाली वाले हो जाते हैं, क्योंकि सुनने वाली कौन है, आत्मा। हम आत्मा होकर के बोलते तो उसके आत्मा को लगती है वो बात। मधुबन में आना है, आपको छुट्टी नहीं मिल रही, 1 सेकंड आत्मा देखते हुए उससे बात करो, है ना। या जो भी, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, 1 सेकंड आत्मा देखते हुए बात करो, उस समय वो हाँ बोलेगा ही, ठीक है। तो जब भी देखना तो आत्मा देखना है। अच्छा, एक बार बाबा ने कहा किसी को देखते हो तो उसके आदि अनादि स्वरूप को देखो, ये बहुत प्रेम स्वरूप है, ये बहुत शांत स्वरूप है, मानो वो गुस्सा कर रहा है, हम क्या देख रहे हैं, ये बहुत प्रेम स्वरूप है, ये तो गुस्सा कर ही नहीं सकती, ये माया हमारा पेपर ले रही है इसके द्वारा, बाकी ये तो शांत स्वरूप आत्मा है। तो ऐसे हम दिनचर्या में, आप खुद ही इसके ऊपर चिंतन करना, उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते, है ना, बाबा की याद बनी रहे, बाबा की छत्र छाया का अनुभव होता रहे। नेक्स्ट श्रीमद् दिनचर्या में और हम क्या करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, शाम का योग करते हैं, और आप एक नियम और बनाओ शाम का, है ना। वैसे तो 6:30 से 7:30 योग होता है, अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो कम से कम 7 से 7:30 आधा घंटा ये जरूर बैठो। दादी जानकी जी हमेशा बताती कि हम कभी आधा घंटा जो 7 से 7:30 का समय होता है, हा? दादी खास यहां भी योग करा करके फिर 7:30 बजे क्लास कराती थी। तो आप ये, बाबा ने कहा वो समय अमृत वेले के समान ही, शाम का जो 7 से 7:30,
तो ऐसे नहीं सोचना कि अमृत वेले के समान ही है तो शाम को योग कर लेते अमृत वेला छोड़ देते, इसका अपना महत्व है। अमृत वेला करते हैं हम अपने लिए करते हैं, और शाम का योग वो भी अपने लिए करते हैं लेकिन सारे विश्व के लिए। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, सारी दुनिया की आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, पुकार रही हैं, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे पूर्वज, मेरे दुख हरो, मेरे कष्ट दूर करो। कौन कर सकेंगे? जो योग में बैठेंगे ना मनसा सेवा, तो उस समय, और मनसा सेवा का मतलब सारी दुनिया की सेवा यही नहीं, पहले हम अपनी सेवा, अपने मन की सेवा कर लें। अगर हमारे मन में दुख अशांति है तो वही फैलेगा फिर, जिसके मन में सुख शांति आनंद है तो वही तो फैला सकेगा। तो अब पहले अपने मन की सेवा, अपने मन की सेवा करना माना अपने मन को शुभ भावनाओं से भरपूर रखना, अपने मन को निर्मल रखना, किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत की भावना ना हो। अगर होगा तो बैठेंगे भले योग में लेकिन वही सामने याद आएगा, है ना। एक भी, इसलिए कहते ना कहावत भी है कि योगी आत्मा कहते ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। दोस्ती का मतलब किसी से इतना लगाव, झुकाव, आकर्षण नहीं, और ना किसी से वैर विरोध की भावना, सबसे समान। तो ये होता है योगी। तो सारे दिन में कुछ समय निकाल करके और विशेष करके शाम को बैठ करके मनसा सेवा, क्योंकि बाबा कहते तुम विश्व के आधार हो, पूर्वज हो, सारे विश्व के, है ना, जैसी तुम्हारी स्थिति, जैसे तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी स्थिति का प्रभाव सारे विश्व की आत्माओं के ऊपर पड़ता है। तुम निगेटिव संकल्प चला रहे हो, व्यर्थ संकल्प चला रहे हो, तो केवल तुम अपना नुकसान नहीं कर रहे हो लेकिन विश्व की आत्माओं का नुकसान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम पूर्वज हो, आधार हो, नींव हो, आपकी स्थिति का प्रभाव सारे विश्व के ऊपर पड़ता है। इसलिए थोड़ा भी समय सकाश देने का अभ्यास जरूर करना, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा विश्व की दुखी अशांत आत्माओं की आवाज सुनाई पड़ती है, तो बाबा पता है क्या करता है? बाबा ने एक मुरली में कहा मैं तुम बच्चों को याद करता हूं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे तो वही हैं। तो बाबा कहता आत्माओं की आवाज सुनो और उन्हें सकाश दो। ये सकाश देने की सेवा करना बहुत बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो जो श्रीमत मर्यादा पर सारा दिन चलते हैं वही हैं बाबा के सच्चे सच्चे ब्राह्मण। एक है सच्चे ब्राह्मण, एक है हाफ कास्ट ब्राह्मण। आप कौन से ब्राह्मण हैं? आप तो बाबा के सच्चे ब्राह्मण हैं। तो सच्चे ब्राह्मण अर्थात श्रीमत मर्यादा पर चलने वाले, सदा चलने वाले, उसमें मनमत परमत मिक्स करने वाले नहीं। तो हमारी यही श्रेष्ठ भावना है कि आप सदा श्रीमत मर्यादा पर चलते रहें, श्रीमत प्रमाण चलते रहें और अपने संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावना के साथ आप सभी का थैंक्स। ओम शांति।